डैनियल की पुस्तक संख्या 38, रत्नों का अनावरण, विलियम मिलर का भविष्य सूचक स्वप्न और सत्य की पुनर्स्थापना।
मिलर के स्वप्न में उसे एक अदृश्य हाथ द्वारा एक संदूक भेजा गया। अपने स्वप्न में उसने संदूक के आयाम 6 × 10 इंच के रूप में समझे। 10 को 6 के वर्ग से गुणा करने पर 360 होता है, जो भविष्यवाणी के वर्ष के दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। मिलर को एक ऐसा संदूक दिया गया जिसमें वो संदेश था जिसे उसे प्रचार करना था, और जो संदेश उसे प्रचार करना था वो इस सिद्धांत पर आधारित था कि बाइबल की भविष्यवाणी में एक दिन एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। वो संदूक बाइबल थी, और मिलर के लिए बाइबल को बाइबल की भविष्यवाणी के दिन के बदले वर्ष सिद्धांत के साथ आयाम में देखा जाना था।
परमेश्वर के वचन से जुड़ी एक कुंजी है जो बहुमूल्य संदूक को खोल देती है हमारे संतोष और आनंद के लिए। मैं प्रकाश की हर किरण के लिए कृतज्ञ हूँ। भविष्य में जो अनुभव अभी हमें अत्यंत रहस्यमय लगते हैं, वे स्पष्ट किए जाएंगे। कुछ अनुभवों को हम शायद कभी पूरी तरह न समझ पाएं, जब तक ये नश्वर अमरत्व न धारण कर ले। पांडुलिपि प्रकाशन, खंड 17, 361।
मिलर के सपने में ताबूत से कुंजी जुड़ी हुई थी, जो उस कार्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती थी जिसे अपनाने के लिए मिलर को प्रेरित किया गया था।
जो लोग तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रचार करने में लगे हैं, वे उसी विधि के अनुसार पवित्र शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं जिसे फादर मिलर ने अपनाया था। व्यूज ऑफ द प्रोफेसीज एंड प्रोफेटिक क्रोनोलॉजी शीर्षक वाली एक छोटी पुस्तक में फादर मिलर बाइबल के अध्ययन और व्याख्या के लिए निम्नलिखित सरल परंतु बुद्धिमत्तापूर्ण और महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत करते हैं। नियम 1 से 5 तक उद्धृत किए गए हैं। उपरोक्त इन नियमों का एक भाग है, और बाइबल का अध्ययन करते समय हम सबके लिए ये हितकर होगा कि हम उल्लिखित सिद्धांतों पर ध्यान दें। रिव्यू एंड हेरल्ड, नवंबर 25, 1884।
जब मिलर ने संदूक खोला तो उन्हें हर प्रकार और आकार के जवाहरात, हीरे, बहुमूल्य पत्थर और हर माप और मूल्य के सोने चांदी के सिक्के, जो संदूक में अपने अपने स्थानों पर सुंदर ढंग से सजे हुए थे, और इस प्रकार सजे हुए वे ऐसी ज्योति और महिमा प्रतिबिंबित कर रहे थे जिसकी बराबरी केवल सूर्य कर सकता था। मिलर ने उन सत्य रत्नों की खोज की जो एडवेंटवाद की आधारभूत सच्चाइयों का निर्माण करते हैं। जो सच्चाइयां उन्हें मिली वे पूर्ण क्रम में व्यवस्थित थीं और सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती थीं। तब मिलर ने उन सत्यों को एक केंद्रीय मेज पर रखा और सबको पुकार कर कहा, आओ और देखो, आओ और देखो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मोहरों के खुलने से लिया गया एक प्रतीक है, और मिलर उन बुद्धिमानों का प्रतिनिधित्व करता है जो अत्यस्तानहोजी की मोहर खोली गई थी उस दानियल के संदेश को समझते हैं। जो सत्य मिलर ने मेज पर रखे थे वे दानियल की पुस्तक के वे अनुसरित सत्य थे जिनकी मोहर यहूदा के गोत्र के सिंह ने खोली थी, और जिनका उद्देश्य उस पीढ़ी की परीक्षा लेना था जो उस समय जीवित थी जब उनकी मोहर खोली गई थी। इसी कारण प्रकाशित वाक्य की पहली 4 मोहरों से संबंधित 4 जीवित प्राणियों ने और मिलर ने उस पीढ़ी को पुकार कर कहा, आ और देखो।
और मैंने देखा कि जब मेमने ने मोहरों में से एक को खोला तो मैंने सुना मानो गर्जन की ध्वनि। 4 प्राणियों में से एक कह रहा था, आओ और देखो। और मैंने देखा, और देखो एक श्वेत घोड़ा, और जो उस पर बैठा था उसके पास धनुष था, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो विजय करता हुआ निकला ताकि विजय करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को कहते सुना, आओ और देखो। तब एक और घोड़ा निकला जो लाल था, और जो उस पर बैठा था उसे पृथ्वी से शांति उठा लेने की सामर्थ्य दी गई ताकि लोग एक दूसरे को मारें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को कहते सुना, आओ और देखो। तब मैंने देखा, और देखो एक काला घोड़ा, और जो उस पर बैठा था उसके हाथ में तराजू था। और मैंने 4 प्राणियों के बीच से एक आवाज सुनी जो कहती थी, एक पेनी में गेहूं का 1 नाप और 1 पेनी में जौ के 3 नाप, और तेल और दाखरस को हानि मत पहुंचाना। और जब उसने 4थी मोहर खोली तो मैंने 4थे प्राणी की आवाज सुनी जो कहती थी, आओ और देखो। तब मैंने देखा और देखो एक फीका घोड़ा, और जो उस पर बैठा था उसका नाम मृत्यु था और नरक उसके साथ साथ था, और उन्हें पृथ्वी के चौथे भाग पर अधिकार दिया गया कि वह तलवार और भूख और मृत्यु और पृथ्वी के पशुओं के द्वारा मार डाले। प्रकाशित वाक्य 6 लेखने दर्शकतन।
ये मसीही थे जिन्हें यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में दर्शाया गया था, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य में 7 मुहरों से मुहरबंद पुस्तक को खोला, और वही यहूदा के गोत्र का सिंह था जिसने उन रत्नों की मुहरें खोली जिन्हें मिलर ने मेज पर रखा था, और फिर सबके लिए ये घोषणा की, आओ और देखो। उसने जो सत्य खोजे थे वे 1843 के पायनियर चार्ट पर सजीव रूप से चित्रित किए गए थे। बहन व्हाइट ने कहा था कि वो प्रभु के हाथ द्वारा निर्देशित था, वही अदृश्य हाथ जिसने मिलर तक रत्नों से भरा संदूक पहुंचाया था। 1842 में तैयार किए गए 300 चार्ट हबक्कुक को आज्ञा की पूर्ति थे कि दर्शन को लिख और पटियाओं पर साफ साफ लिख। मिलर के कमरे के बीच में रखी मेज उन 300 चार्टों पटियाओं का प्रतीक थी जिन्हें मिलराइट संदेश वाहकों ने 1842 और 1843 में संसार भर में ले गए थे। वो चार्ट 1850 के पायनियर चार्ट के साथ मिलकर हबक्कुक अध्याय 2 की पटियाए माने गए थे।
जब मूल विश्वास पर स्थिर रहते हुए द्वितीय आगमन के व्याख्याताओं और पत्रिकाओं ने ये संयुक्त साक्ष्य दिया कि चार्ट का प्रकाशन हबक्कुक 2:3 की पूर्ति था। यदि चार्ट भविष्यवाणी का विषय था और जो इसका इनकार करते हैं वे मूल विश्वास को छोड़ देते हैं, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 2000 तीसरा दिनों की गणना आरंभ करने का वर्ष ईसा पूर्व 146 था। ये आवश्यक था कि 1843 ही प्रथम प्रकाशित समय ठहरे ताकि दर्शन ठहरे, अर्थात एक ठहरने का समय हो जिसमें कुमारियों का समूह समय के इस महान विषय पर ऊँघे और सोए, ठीक उससे पहले कि उन्हें मध्यरात्रि के पुकार द्वारा जगाया जाए। जेम्स वाइट, सेकंड एडवेंट रिव्यू एंड सबथ हेरोल्ड, वॉल्यूम 1, नंबर 2।
उस संदेश रत्न पर प्रतिक्रिया देना शुरू करने वाले लोग, जो बाद में हबक्कुक की तालिका पर दर्शाया गया था, शुरू में थोड़े ही थे, परंतु 11 अगस्त 1840 को दिन वर्ष सिद्धांत की पुष्टि होने पर लोगों की संख्या बढ़कर भीड़ हो गई।
ठीक उसी समय जो निर्दिष्ट किया गया था, तुर्की ने अपने राजदूतों के माध्यम से यूरोप की संबद्ध शक्तियों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और इस प्रकार अपने को मसीही राष्ट्रों के नियंत्रण के अधीन कर दिया। इस घटना ने भविष्यवाणी को ठीक ठीक पूरा कर दिया। जब यह ज्ञात हुआ तो बहुसंख्यक लोग मिलर और उसके सहकर्मियों द्वारा अपनाए गए भविष्यवाणी की व्याख्या के सिद्धांतों की शुद्धता के प्रति आश्वस्त हो गए और आगमन आंदोलन को एक अद्भुत प्रेरणा मिली। विद्वान और प्रतिष्ठित पुरुष प्रचार करने तथा उसके विचारों को प्रकाशित करने दोनों में मिलर के साथ जुड़ गए और 1840 से 1844 तक ये कार्य तीव्रता से फैल गया। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 334-335।
तब भीड़ ने रत्नों को अस्त व्यस्त करना शुरू कर दिया। उसी बिंदु पर मिलर रत्नों के बिखराव की पहचान करने लगते हैं। स्कैटर शब्द लैव व्यवस्था अध्याय 26 के 7 टाइम्स के प्रमुख प्रतीकों में से एक है, और मिलर अपने स्वप्न की प्रस्तुति में स्कैटर शब्द के कुछ रूपों का उपयोग 10 बार करते हैं। 10 परीक्षा का प्रतीक है, और ये मिलर के स्कैटर्ड रत्नों के प्रतीकात्मक अर्थ की सही समझ को उन लोगों के लिए जिन पर संसार के अंत आ पहुंचे हैं एक भविष्य सूचक परीक्षा के रूप में चिह्नित करता है। 7 बार के रत्न का अस्वीकार वो पहला रत्न था जिसे लाओदीकियाई एडवेंटवाद ने एक किनारे रख दिया, क्योंकि वे मूसा के विखराव की उस कसौटी में असफल हुए थे जिसे 1833 में एलिया मिलर ने प्रस्तुत किया था। उस बिंदु से आगे रत्न क्रमशः अधिक अधिक बिखेर दिए जाते, उन्हें नकली प्रतिरूपों के साथ मिला दिया जाता और अंततः पूरी तरह ढक दिया जाता। कीमती रत्नों को ढक देना अंततः उस बिंदु तक पहुंच जाता जहां संदूक बाइबल नष्ट कर दिया जाता। मिलर के स्वप्न में मिलर द्वारा स्कैटर शब्द के पहले 7 बार के प्रयोग और उसके द्वारा इस शब्द के अंतिम 3 प्रयोगों के बीच स्पष्ट अंतर है। स्कैटर का 7 बार उल्लेख करने के बाद वो पूरी तरह निरुत्साहित और हताश हो गया और बैठ गया और रोया। यूहन्ना रोया इससे पहले कि यहूदा के गोत्र का सिंह के रूप में दर्शाए गए मसीह प्रकाशित वाक्य में 7 मोहरों से मोहरबंद पुस्तक की मोहरें खोलने का अपना कार्य आरंभ करते। यूहन्ना और मिलर दोनों रोए जब उन्होंने समझा कि संदूक परमेश्वर का वचन नकली रत्नों से ढककर दबा दिया गया था।
और मैंने जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जी भीतर और पीछे की ओर लिखी हुई थी और 7 मोहरों से मोहरबंद थी। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को ऊंचे स्वर में ये घोषणा करते हुए देखा, कौन इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य है? और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा था जो उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने में सक्षम था। और मैं बहुत रोया, क्योंकि कोई मनुष्य न तो ये पुस्तक खोलने और पढ़ने के योग्य पाया गया, न ही उस पर दृष्टि डालने के। तब प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद की जड़, ने पुस्तक खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ देने के लिए विजय पाई है। प्रकाशित वाक्य 5:1-5।
जब मिलर द्वारा खोजे गए और दुनिया के सामने प्रस्तुत किए गए रत्नों की लगातार बढ़ती अस्वीकृति उस हद तक पहुंच गई कि बाइबल संदूक नष्ट कर दी गई, तब मिलर रो पड़े।
तब मैंने देखा कि असली गहनों और सिक्कों के बीच उन्होंने बेशुमार मात्रा में नकली गहने और जाली सिक्के बिखेर रखे थे। उनके निकृष्ट आचरण और कृपगनता पर मैं बेहद क्रोधित हुआ और इसके लिए उन्हें डांट फटकार लगाई। परंतु जितना अधिक मैं डांटता फटकारता, उतना ही अधिक वे असली के बीच नकली गहने और जाली सिक्के बिखेरते जाते। तब मेरी शारीरिक आत्मा खिन्न हो उठी और मैंने उन्हें कमरे से बाहर धकेलने के लिए शारीरिक बल का सहारा लेना शुरू किया। परंतु जैसे ही मैं एक को बाहर धकेलता, 3 और भीतर आ जाते और साथ में मिट्टी, बुरादा, रेत और तरह तरह का कूड़ा करकट ले आते, यहाँ तक कि उन्होंने हर एक असली रत्न, हीरा और सिक्का ढक दिया और वे सब आँखों से ओझल हो गए। उन्होंने मेरा संदूक भी तोड़फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे कूड़े में बिखेर दिया। मुझे लगा कि मेरी पीड़ा या मेरे क्रोध की किसी को परवाह नहीं। मैं पूरी तरह निरुत्साहित और हताश हो गया और बैठकर रो पड़ा।
उसके स्वप्न के इस चरण पर विखेरना शब्द का प्रयोग 7 बार किया गया है। अंतिम 3 प्रयोग पहले 7 से भिन्न हैं और इस प्रकार लैवे व्यवय विषय के अध्याय 26 के 7 गुना के प्रतीक रूप में उन 7 बिखरावों पर एक भविष्य सूचक चिन्ह लगा देते हैं। मिलर का दूसरा स्वप्न नबूकदनेस्सर के दूसरे स्वप्न की तरह 7 गुना की प्रतीकात्मक पहचान कराता है। प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में यूहन्ना के साथ जैसे हुआ, वैसे ही जब मिलर रोया, तब धूल झाड़ने वाला व्यक्ति यहूदा के गोत्र का सिंह ने द्वार खोला और कमरे में प्रवेश किया। पिता के हाथ में उस पुस्तक का दृश्य चित्रण, जो 7 मोहरों से मोहरबंद थी, जिसे कोई मनुष्य खोल नहीं सकता था और जिसने यूहन्ना को रुला दिया था, अध्याय 4 की 1 आयत में आरंभ हुआ।
इसके बाद मैंने देखा और देखो, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ था और वो पहली आवाज जो मैंने सुनी ऐसी थी जैसे कोई तुरही मुझसे बातें कर रही हो। वो कहती थी, इधर ऊपर आ और मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा जो इसके बाद अवश्य होने वाली हैं। प्रकाशित वाक्य 4:1-2।
मिलर रोया और उसने देखा कि एक द्वार खुल गया। जब मैं इस प्रकार अपने बड़े नुकसान और अपनी जवाबदेही को लेकर रो रहा और शोक कर रहा था, तब मैंने परमेश्वर को स्मरण किया और मन लगाकर प्रार्थना की कि वो मेरी सहायता के लिए किसी को भेजे। तुरंत द्वार खुल गया और एक व्यक्ति कमरे में आया। तभी वहां मौजूद सभी लोग बाहर चले गए और उसके हाथ में झाड़ू था। उसने खिड़कियां खोली और कमरे की धूल मिट्टी तथा कचरा बुहारने लगा। जॉन और मिलर जब रो रहे थे, तब यहूदा के गोत्र का सिंह और झाड़ू वाला व्यक्ति द्वार के खुलने पर आ पहुंचे। द्वार का खुलना युग परिवर्तन का प्रतीक है। मिलर की तरह वो रोया और एक दरवाजा खुल गया, पर उसने प्रार्थना भी की। मैं पूरी तरह निराश और हताश हो गया और बैठकर रोने लगा। जब मैं इस प्रकार अपने बड़े नुकसान और अपने उत्तरदायित्व का शोक मनाते हुए रो रहा था, तो मुझे परमेश्वर का स्मरण हुआ और मैंने दिल से प्रार्थना की कि वो मेरी सहायता भेजे। तुरंत दरवाज़ा खुल गया और एक आदमी कमरे में आ गया। उसी समय वहां मौजूद सब लोग बाहर चले गए। उसके हाथ में धूल झाड़ने का ब्रश था। उसने खिड़कियां खोलीं और कमरे से धूल, मिट्टी और कूड़ा करकट झाड़ने लगा। अंतिम दिनों के इतिहास में मार्ग चिन्ह बनने वाली प्रार्थना वो है जिसे दानियल और तीन वीरों ने अध्याय 2 में और दानियल ने अध्याय 9 में भी चिन्हित किया है। ये लैवीय व्यवस्था 26 की 7 बार वाली प्रार्थना है, जिसे प्रकाशित वाक्य 11 के 2 साक्षियों को तब प्रार्थना करना है जब वे समझेंगे कि वे बिखरा दिए गए थे। 2 साक्षियों को वही दोहराना है जो दानियल ने अध्याय 9 में किया था, जब उसने पहचाना कि वो मूसा के शाप की पूर्ति में बिखेरा गया था। 2 साक्षियों को वही दोहराना है जिसका मिलर ने अपने स्वप्न में चित्रण किया था, जब वो उस बिंदु पर पहुंचा जहां उसके रत्न 7 बार बिखरा दिए गए थे। जब वो प्रार्थना दर्ज होती है, एक दरवाजा खुलता है, धूल गंदगी झाड़ने वाला आदमी आता है और कमरा खाली हो जाता है। दुष्टों की भीड़ जा चुकी थी और एक नई व्यवस्था आ गई थी। तब यहूदा के गोत्र का सिंह, जिसके हाथ में झाड़ने का सूप है, खिड़कियां खोली और कमरे की धूल, मिट्टी और कूड़ा करकट झाड़ना शुरू किया। और जैसे वह धूल, मिट्टी और कूड़ा करकट झाड़ता गया, नकली गहने और जाली सिक्के सब उठे और बादल की तरह खिड़की से बाहर निकल गए और हवा उन्हें उड़ा ले गई। खुली खिड़कियां एक विभाजन को भी दर्शाती हैं, क्योंकि जैसे कूड़ा खिड़की से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही जिन्होंने मलाकी में पाई जाने वाली उस आज्ञा का पालन किया है जो अंतिम दिनों के याजकों को ये निर्देश देती है, सब दशमांश शुभ भंडार गृह में ले आओ ताकि मेरे घर में भोजन हो, और अब इसमें मेरी परीक्षा करो। सेनाओं के यहोवा कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां न खोलूंगा और तुम पर ऐसी आशीष उंडेलूं कि उसे समा लेने को स्थान न होगा। खुला दरवाजा और खुली खिड़कियां व्यवस्था में एक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती हैं जो उस समय पूरा होता है जब दुष्ट याजकों को हटाया जाता है और धर्मी याजकों को आशीष दी जा रही है होती है। जैसे ही झाड़ू लगाने वाला अपना फर्श पूरी तरह साफ करने लगता है, मिलर एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लेता है। आपाधापी में मैंने एक पल को आंखें बंद कर ली। जब खोली तो कूड़ा करकट सब गायब था। बहुमूल्य रत्न, हीरे, सोने और चांदी के सिक्के कमरे में चारों ओर बहुतायत से बिखरे पड़े थे। तब कीमती और निकृष्ट पूरी तरह अलग हो गए थे। फिर बड़ा संदूक मेज पर रखा गया और बिखरे हुए रत्न उसमें डाल दिए गए। तब उसने मेज पर एक संदूक रखा जो पहले वाले से कहीं बड़ा और अधिक सुंदर था, और रत्नों, हीरों, सिक्कों को मुट्ठी मुट्ठी भरकर इकट्ठा किया और उन्हें संदूक में डाल दिया, जब तक कि एक भी शेष न रहा, यद्यपि कुछ हीरे सुई की नोक से बड़े नहीं थे। तब मिलर के आधारभूत सत्य न केवल बाइबल के साथ बल्कि भविष्यद्वाणी की आत्मा के साथ भी एकत्र किए गए, और वे सत्य अपनी मूल अवस्था से भी अधिक सुंदर और अधिक उज्ज्वल हो गए। जब हम 1798 में खोले गए संदेश के संदर्भ में उलाई नदी के दर्शन का मूल्यांकन करते हैं, तो ये समझना चाहिए कि उन सत्यों में से कुछ मिलर को दिए गए ढांचे द्वारा सीमित थे। ये भी अपेक्षित है कि फलस्वरूप उन सत्यों में से कुछ और अधिक व्यापक और अधिक सुंदर होंगे, यद्यपि उनमें से कुछ छोटे या मामूली प्रतीत हो सकते हैं। जब सत्यों की पुनर्स्थापना हो जाती है तो उन्हें एक बड़े संदूक में डाल दिया जाता है। फिर पुकार एक बार फिर की जाती है, मिलर द्वारा नहीं बल्कि मसीह द्वारा, जो धूल झाड़ने वाला व्यक्ति है, जो यहूदा के गोत्र का सिंह है, आओ और देखो। ये दर्शाता है कि अभी अभी एक मुहर खुली है, और अंतिम मुहर खुलना यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो अनुग्रह काल के समाप्त होने से ठीक पहले होता है, या जैसा कि सिस्टर वाइट बताती हैं, जब धूल झाड़ने वाला व्यक्ति प्रवेश कर गया होता है।
मैंने पेटी में झांका पर वो दृश्य देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं। वे अपनी पूर्व महिमा से 10 गुना अधिक चमक रहे थे। मुझे लगा कि जिन दुष्ट लोगों ने उन्हें धूल में बिखेर कर रौंद दिया था, उनके पैरों से रेत में रगड़ खाकर वे मांज दिए गए थे। पेटी में वे सुंदर क्रम से सजे थे, हर एक अपनी जगह पर, मानो उन्हें भीतर डालने वाले व्यक्ति के किसी भी दिखाई देने वाले परिश्रम के बिना ही। मैं अत्यंत आनंद से चिल्ला उठा और उसी चिल्लाहट से मेरी नींद खुल गई। अर्ली राइटिंग्स 88
प्रतीक्षा काल और पहली निराशा का आगमन 18 जुलाई 2020 को हुआ और जुलाई 2023 से यहूदा के गोत्र का सिंह यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य के संदेश की सीलें खोलता आ रहा है। उस उन्मोचन में दानियल की पुस्तक भी शामिल है और हम अगले लेख में मिलर के स्वप्न पर अपना विचार विमर्श समाप्त करेंगे। धूल झाड़ने वाले व्यक्ति का कार्य ज्ञानी याजकों के सहयोग से संपन्न किया जाता है और उन याजकों का कार्य जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के दो साक्षी हैं और जो यहेजकेल अध्याय 37 की पुनर्जीवित मृत हड्डियाँ हैं परमेश्वर के वचन की अन्य पंक्तियों द्वारा भी दर्शाया गया है। हम उन पंक्तियों में से कुछ का उपयोग विलियम मिलर के दूसरे स्वप्न के संबंध में जो हमने पहचाना है उसके लिए द्वितीय साक्षियों के रूप में करेंगे।
पवित्र शास्त्र हमारे लाभ के लिए दिए गए हैं ताकि हम धर्म में शिक्षा पाएं। मूल्यवान प्रकाश की किरणें त्रुटि के बादलों से ढंग गए हैं, परंतु मसीह त्रुटि और अंधविश्वास की धुंध को दूर करने और हमें पिता की महिमा का तेज प्रकट करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम भी शिष्यों की तरह कहें, क्या जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था तब हमारा हृदय हमारे भीतर न जल उठा। पब्लिशिंग मिनिस्ट्री क्षत्रिय सरतेओ।